আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদাম বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو یعنی چاند کی 13 تاریخ کو اور انگریزی 17 یعنی 17 اگست کو والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی 11ویں سالانہ فاتحہ یعنی آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 11 سال ہو چکے. آپ کی حیات مبارکہ پر بہت کچھ لکھا گیا, بہت کچھ کہا گیا, علماء و مشائخ نے تحریری طور پر بھی اور تقریری طور پر بھی آپ کو خراج عقیدت اور محبت پیش کیا. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی یہ نشست ہے, اور حقیقت حال تو یہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ ایک بحر زخار ہے جس کو ایک نشست میں بیان کرنا ناممکن ہے, لیکن آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے, جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس مرد قلندر نے کس طرح اپنی زندگی گزاری, اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, محبت اور فرما برداری میں گزاری, اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی اولاد, اپنے مریدین, متقدین, متوسلین اور دیگر حضرات کے لیے تربیت اور اسلامی تعلیمات کا ایک ایسا حسین سنگم اپنی ذات کو بنایا کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے. تو آئیے آج ہم حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے حیات مبارکہ کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے معمولات میں جو چیزیں تھیں اس میں سب سے پہلے سورہ مزمل. یہ سلسلہ اشرفیہ میں ایک تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی. اعلی حضرت شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ اس کے عامل تھے. محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچوچوی نور اللہ مرقدہ اس کے عامل تھے. قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی قدس سرہ اس کے عامل تھے, اور انہوں نے ہی اپنے فرزند اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کو اس کی اجازت عطا فرمائی. دادا حضور قبلہ کے بارے میں تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کا چلہ دریائے جمنا میں کیا, ناف تک پانی میں کھڑے ہو کر, اور پھر اس کے فیوز و برکات حاصل کیے. والد گرامی فرماتے ہیں کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا اور ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے یہ سورہ مزمل کا چلہ کرا دیں. آپ نے دریائے جمنا میں انڈیا میں وہاں کیا اتنی محنت مشقت, تو اپنی نگرانی میں مجھے یہاں پر یہ چلہ کرا دے. انہوں نے فرمایا جب وقت آئے گا دیکھا جائے. اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی ایک شان ہے, جب ان کی طبیعت خوش ہو جائے سب کچھ عطا فرما دیتے. والد گرامی فرماتے ہیں کہ مختلف اوقات میں میں ان سے عرض کرتا رہا, انہوں نے کہا جب وقت آئے گا دیکھا جائے. مہاجرین کے لیے گورنمنٹ نے کلفٹن پر پی این اے شفا جو ہے آج کل वहां पर मिलिट्री हॉस्पिटल में बैरिकें बनाई थी, बीच में तिरपाल डाल के पार्टीशन कर दिए, कमरे बना दिए और महाजरीन को वहां ठहरा दिए कि जब आपके लिए इलाका कोई मुंतखिब होगा तो आप यहां से वहां मुंतकिल हो जाएंगे। तो मेरे वालिद गिरामी और दादा हुजूर किबला वहीं पर 4 साल महाजरीन के उसमें कयाम फरमा रहे। फरमाते हैं कि एक दिन सख्त सर्दी थी, सर्दियों का मौसम था, तेज हवा चल रही थी और बैरिकें जो बनी हुई थी, जैसे आप देखते हैं ना अस्पताल में एक लंबा सा एक बरामदा होता है फिर साइड में कमरे होते हैं, इस तरह था। अब उसमें तिरपाल से पार्टीशन कर दिया जाए तो हवा तो उससे नहीं रुकती, तेज हवा चल रही और सामने मैदान और ठंडी यख हवा। रात का वक्त था, दादा हुजूर किबला को बुखार हुआ और उनकी एक आदत मुबारक थी, जैसे हम लोग कभी उफ कहते हैं, कभी हाय कहते हैं, कभी हमारे मुंह से ऐसे जुमले निकलते हैं, उनके मुंह से जुमला निकलता था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें यह जुमला निकलता, यानी बेख्तियारी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क में इतने डूबे हुए थे, जब करवट लेते थे यही जुमला निकलता था या रसूल अल्लाह। वालिद गिरामी हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनको सख्त बुखार था, सर्दी हो रही है, कंबल ओढ़ा हुआ है, आराम फरमा है, तो उन्होंने करवट ली और जबान से निकला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते मैं हाजिर हुआ, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने फरमाया बेटा पानी लेकर आओ। फरमाते मैं पानी लेने के लिए गया और जब मैं पानी लेकर आया तो देखा कि वो सो गए। मैं उसी तरह खड़ा रहा कि अगर मैं चला गया और इनकी आंख खुली और इनको पानी की जरूरत पड़ी तो वो फिर मुनासिब नहीं होगा कि मुझे आवाज देंगे, आवाज देने की नौबत ना आए। मैं वहीं पर खड़ा रहा, यहां तक के 2 घंटे खड़ा रहा सर्दी के आलम में। और फरमाते इतनी तेज हवा चल रही थी कि मेरे हाथ और पैर सुन हो गए बिल्कुल, एक आदमी एक सर्दी में खड़ा हो जाए तो क्या कैफियत हो। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वालिद गिरामी को तकलीफ ना हो, जब उनकी आंख खुले मैं फौरन पानी पेश करूं, बस वो 2 घंटे जो थे उन 2 घंटों ने काम कर दी। जब उन्होंने करवट ली, जबान से निकला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब देखा फरमाया कैसे खड़े हो, क्या आपने पानी मांगा था? अच्छा जब से तुम खड़े हो? उन्होंने कहा, तबीयत खुश हो गई कि देखो ये मेरा इताद गुजार बेटा 2 घंटे मेरे लिए खड़ा रहा सिर्फ इसलिए कि मैं जब पानी मांगू ये मौजूद हो। पानी पिया, उसके बाद फरमाया वजू कराओ। हजरत को उन्होंने अपने कंधे पर हाथ रखे क्योंकि कमजोर हो गए थे, उनको पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता लेकर गए, बिठाया, वजू का पानी गर्म किया। फिर उस जमाने में इतनी आसानी नहीं थी कि गीजर हो या कुछ हो, बेसारो सामानी की कैफियत। तो फरमाते हैं कि स्टोव में, स्टोव जो होता था उसमें पानी गर्म किया और फिर ठंडा गर्म पानी मिलाकर फिर अपने हाथ पर डाल के देखा कि मुनासिब हो गया तो फिर लोटा एक भरा, फिर जाके उनके लिए एक वो बड़ा सा एक कुर्सी नुमा एक वो था वो रखा, उस पर उनको बिठाया, उनको वजू कराया, फिर दूसरी तरफ जाकर चटाई बिछाई, फिर उनका मुसल्ला बिछाया और उनकी तस्बीह रखी और फिर दोबारा से उनको पकड़कर आहिस्ता से लाकर मुसल्ले पर खड़ा किया। और जब मुसल्ले पर खड़े हुए तो उन्होंने अपने हाथ यूं किए, फरमाया आओ बेटा। वालिद गिरामी फरमाते मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने मुझे सीने से लगाया और सीने से लगाकर भींचा। जब जोर से भींचा तो मुझे महसूस हुआ कि दिल के अंदर कोई ठंडी ठंडी चीज उतर रही। एक मर्तबा भींचा, दोबारा भींचा, तीसरी मर्तबा जब भींचा फरमाया मुझे ऐसा लगा कि हलक तक मेरा भर गया बिल्कुल, और उसके बाद छोड़ दिया, फरमाया जाओ सूरह मुजम्मिल का अमल तुम्हें अता कर दी। आज हमने सूरह मुजम्मिल का अमल तुम्हें अता कर दिया, अब तुम्हें किसी चिल्ले की जरूरत नहीं है, 100 मर्तबा रोजाना फजर के बाद सूरह मुजम्मिल पढ़ लिया करो। यह है बुजुर्गों की शान, जब तक तलब ना हो तो अता नहीं होती, और जब दिल खुश हो जाए तो ऐसी अता होती है कि दुनिया देखती रह जाती। और ये इतनी जलाली चीज है कि अगर कोई आदमी पढ़ना शुरू कर दे बगैर इजाजत 100 मर्तबा तो उसका दिमाग जो है वो आउट हो जाए। आउट होने से मतलब ये कि गुस्सा पैदा हो जाए तबीयत में, हर एक से लड़ेगा झगड़ेगा, मिजाज में गर्मी पैदा हो जाएगी। ये सूरह मुजम्मिल इतनी जलाली चीज, लेकिन वारिद गिरामी को आप हजरात ने देखा, आपने उनकी ज्यारत भी की, कि उनके मिजाज में कोई गर्मी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, ठंडक ही ठंडक थी मुरीदीन के लिए, तो रहमत ही रहमत। कभी किसी को डांटा नहीं, कभी किसी को झड़का नहीं, ये सब दादा हुजूर किबला की मेहरबानी थी और उनका कर्म। और 100 मरतबा ये उस वक्त गालिबन, अभी मेरे जहन में वो सही सन नहीं है, गालिबन ये 48 या 49 का सन होगा, उस वक्त से लेकर और 2005 में, 17 दिसंबर 2005 को हजरत का विसाल हुआ, उस वक्त से लेकर सन 2005 तक एक दिन की भी नागा नहीं। ये है इस्तेकामत, इस्तेकामत अलल मामूलात। हमें जरा सा बुखार हो जाए तो छोड़ दे वज़ाइफ, क्या नमाजें भी लोग छोड़ देते, सर में दर्द हो गया तो फजर नहीं पड़ी, उठ नहीं सका तो फजर नहीं पड़ी, काम में मशगूल हो गया मैंने जोहर नहीं पड़ी, फरंदा का शादी में चला गया देर से आया इशा नहीं पड़ी, फिर मैं सो गया, फिर नमाज निकल गई फजर हो गई। हमारी कैफियत तो ये है, और अल्लाह के नेक बंदों की कैफियत ये है कि नमाज तो दूर की बात है, जो उनके वजाइफ हैं उसमें भी एक दिन का नागा नहीं, मुसलसल इस्तेकामत के साथ। और इस्तेकामत की कैफियत ये होती है, आप देखते ना पानी और पत्थर, इसका क्या मेल है, पानी अगर पत्थर पर गिरे तो पत्थर पे कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर पानी की एक एक बूंद मुसलसल गिरती रहे तो पत्थर में गड़ा पैदा कर देती, मुसलसल गिरने से कंटिन्यू, तो जो काम मुसलसल होता है उसमें बरकत होती है, इस्तेकामत होती है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रहमतें नाजिल होती। तो ये सूरह मुजम्मिल के वो आमिल थे, और सारी जिंदगी उन्होंने पढ़ा, सबको इजाजत दी, कितनों को पढ़वा दिया। कमाल तो ये है कि जो नमाज नहीं पढ़ते थे उनसे वज़ाइफ भी पढ़वा दिए, और उनको पक्का और सच्चा नमाजी बना, ये उनकी निगाह करम। फिर उनके मामूलात में एक चीज थी, दुआए हिजबुल बहर, आप हजरात ने भी उसका चिल्ला किया रमजान मुबारक में, और हमने उसकी इजाजत दी। खुदा का शुक्र है कि तमाम हजरात ने बड़ी इस्तेकामत के साथ और बड़े शौक के साथ ये चिल्ला मुकम्मल किया, अल्लाह तबारक व ताला उसके फ्यूज व बरकात आप सबको अता फरमाए। साहिब हिजबुल बहर हजरत शेख अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़े जलीलुल कदर बुजुर्ग गुजरे हैं, उनको ये दुआ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाई थी। उसकी एक तफसील है, वो हम और नशिस्तों में बयान कर चुके हैं, और आप हजरात बखूबी उससे वाकिफ हैं, और जो दुआ हिजुल बहर हमारी दरगाह शरीफ की छपी हुई है उसकी इब्तिदा में वो सारा वाकया मौजूद है कि ये दुआ किस तरह हजरत शेख शाजली रहमतुल्लाह अलैह को अता हुई और किस तरह वालिद गिरामी को अता हुई, ये वाकया भी मौजूद है, तो वो आपके सामने हम बयान करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने वारिद गिरामी की खिदमत में ये अर्ज किया, यानी हजरत अशरफुल मशाइख ने दादा हुजूर किबला की खिदमत में अर्ज किया कि जितने बुजुर्गाने दीन मेरे शजरे में हैं मैं उनकी जियारत करना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया ठीक है कर लो, कोई मसला नहीं। अब मसला क्यों नहीं है, जब दिल साफ होता है तो फिर यार का जलवा नजर आ जाता, दिल के साफ होने की जरूरत, जब तक दिल सियाह है तो फिर कुछ नजर नहीं आता। कहते हैं आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। अंधा तो कहेगा कि सूरज है ही नहीं, हालांकि पूरी दुनिया कह रही है सूरज है, दिन निकल आया, अंधे को नजर ही नहीं आए। तो जो अकल के अंधे हैं वो तो यही कहेंगे कुछ नहीं है, और जिनकी बातनी आंख खुली हुई है वो कहेंगे सरकार तो जिंदा है, हयात है, सुन रहे हैं, जवाब बता फरमा, वो तो यही ज्यारत कर रहे हैं। फरमाया ठीक है। तो वारिद गिरामी हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया ठीक है आज रात को जियारत करो। तो जब रात को सोते थे रोजाना रात को एक बुजुर्ग की जियारत होती, और कमाल की बात क्या थी, ख्वाब ये देखते थे ताबीर वो बताते। अभी इन्होंने बताया नहीं कि मैंने क्या ख्वाब देखा, ख्वाब देखा सुबह उठे नाश्ते में जब बैठे तो दादा हुजूर किबला ने फरमाया वालिद गिरामी से, कल रात तुमने जिन बुजुर्ग की जियारत की थी उनका नाम ये है। है ना कमाल की बात, भाई आप ख्वाब देखें तो मुझे क्या पता, और मैं देखूं तो आपको क्या पता, जब तक हम बता ही नहीं। ख्वाब देखने वाला ख्वाब आकर बताता है, फिर उसकी ताबीर दी जाती है। लेकिन वहां कश्फ का यह आलम है कि ख्वाब बेटा देख रहा है, बाप ताबीर से वह बता रहा, बगैर बताए। उन्होंने अभी बताया नहीं कि मैंने क्या देखा। जिन बुजुर्ग को देखा उनका हुलिया क्या था, उनकी दाढ़ी कैसी थी, उनका लिबास कैसा था, बगैर सुने फरमा दिया बेटा कल रात तुमने जिनकी जियारत की थी वो हमारे शिजरे में बुजुर्ग है, उनका नाम ये है, उनका मजार फला मकाम पर। फरमाते कि इसी तरह रोजाना जियारत होती रही। एक दिन मैंने ख्वाब में देखा, यानी ये हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि वालिद गिरामी यानी हजरत कुतुब रब्बानी तशरीफ लाए और उनका बाजू पकड़कर कहा चलो हम तुम्हें शेख अबुल हसन शाजली की जियारत कराएं। ख्वाब में उन्होंने कहा ठीक है चले। तो फरमाते हैं कि मेरा बाजू पकड़ के तेजी के साथ चल रहे, जैसे मैदान है, चलते रहे सामने किला नुमा इमारत नजर आई और उसका एक बहुत बड़ा दरवाजा है, वहां पर दो चौकीदार खड़े हैं और उनके हाथ में जैसे पुराने जमाने में वो बल्लम होते थे, आगे से गोल पीछे से लकड़ी थी, वो ऐसे क्रॉस में लेकर खड़े ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो सके। तो जैसे ये दोनों पहुंचे उन्होंने खोल दिया, ये अंदर दाखिल हो गए। तो फरमाते मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी मस्जिद है। तो वालिद गिरामी ने कहा कि बेटा वुजू कर लो। तो मैंने कहां करूं, उन्होंने कहा यहां साइड में। मैंने देखा तो वुजू की बाकायदा जैसे मसाजिद में टोटियां लगी हुई हैं, यानी मैंने बैठ के वुजू किया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और तेजी के साथ चले। अंदर देखा कि पूरी मस्जिद जो है वो बुजुर्गान दीन से भरी हुई, जितने भी लोग हैं सब सफेद अमामा पहने हुए हैं और सफेद लिबास पहने, और हर एक का चेहरा जो है वो चमक रहा। किसी की काली दाढ़ी है, अक्सर जो है उनकी सफेद दाढ़ी है, अजीब अजीब नूरानी चेहरे करने मैंने देखे, पूरी मस्जिद भरी हुई। और दादा हजूर किबला वारिद गिरामी का हाथ पकड़कर तेजी के साथ चले जा रहे, यानी वो मजमा जो है उसके बीच में से चलते रहे और सीधे मस्जिद की मेहराब में पहुंच गए। फरमाते हैं कि मस्जिद की मेहराब में मैंने देखा कि जिस तरह इमाम नमाज पढ़ाने के बाद इस तरफ मुकर के बैठता है, तो एक बुजुर्ग बिल्कुल उसी अंदाज में बैठे, सर पर सफेद अमामा है, सफेद जुब्बा है, सफेद दाढ़ी है, और उनका चेहरा ऐसा है कि जैसे उससे शुआएं निकल रही। और जब उनके करीब में पहुंचा तो वालिद गिरामी ने कहा ये हैं हजरत शेख अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाह, इनकी जियारत करो। फरमाते मैंने उनको देखा और खूब अच्छी तरह उनकी जियारत की, और उनके सामने एक थाल रखा हुआ है जिसमें जलेबियां रखी हुई, जैसे बांटने के लिए रखते हैं ना, उसमें कपड़ा ढक देते हैं, आधा खुला होता है आधा ढका होता है, उस अंदाज में रखा हूं। और फरमाते फिर वालिद गिरामी ने मुझे पकड़ के उनके कदमों में डाल दिया और उनसे कहा कि ये आपका गुलाम है, इसको इसका हिस्सा दे दीजिए। और मैंने उनके कदमों को पकड़ लिया, उन्होंने फिर उठाया शफकत मोहब्बत से, हाथ फेरा सर के ऊपर और फिर जलेबियां निकालकर खिलानी शुरू की। जो सामने थाल रखा था जलेबी उठाई और वालिद गिरामी को खिलाई। फरमाते मैंने एक खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, मुसलसल खिला रही और मैं खा रहा हूं। कहने फिर मुझे महसूस हुआ कि बिल्कुल मेरा पेट भर गया। तो जब उन्होंने महसूस कर लिया कि अब ये मजीद नहीं खा सकते, तो कहा कि बेटा अपना दामन फैलाओ। फरमाते मैंने अपना कुर्ता ऐसे ऊंचा करके उसके दामन यूं फैला दिया, तो जलेबी उठा के कुर्ते में डाल, कह रहे डालते रहे, इतना डाला कि ऊपर तक भर गया। और मैं उसी हालत में खड़ा हुआ, फरमाया जाओ ये दुआए हिजुल बहर का फैज हमने तुम्हें दिया है, ये बांटते रहो। वो जलेबी वैसी नहीं थी, वो देखने में तो थी लेकिन असल वो फैज था, कहा ये फैज है ये बांटते रहो। अब वारिद गिरामी फरमाते जब मैं वहां से उठा तो मेरे दोनों हाथ इस तरह थे, कुर्ते को पकड़ा हुआ था, जलेबियां थी और जितने बुजुर्गान दीन थे वो सब सुभान अल्लाह और मुबारकबाद मुझे कह रहे, यानी उन सबको भी पता था कि इनको दुआए हुजूर बहर का फैज शेख की जानिब से मिला। फरमाते हैं कि अब मैं वहां से उठा और जब मैं चला तो उसी कैफियत में कुर्ते का दामन पकड़े हुए, जलेबियां ऊपर तक भरी हुई हैं। अब मैं दिल में सोच रहा हूं कि घर में जाऊंगा तो लोग हंसेंगे देखकर, रास्ते में लोग देखेंगे जलेबियां कुर्ते में भर के लिया, इसमें तो शीरा होता है, ये सब खराब हो जाएगा। कहते मैं यही सोचते सोचते आगे चला तो एकदम मैं किसी चीज से टकराया तो मेरी आंख खुल गई। चन्या जब आंख खुली तो मैं अपने कमरे से उठकर बाहर सहन में आ गया था और जो सुतून थे उससे मैं टकरा गया। तो पीछे से दादा जुर किबला आए, उन्होंने पकड़ लिया, कहा बस गिर जाओगे, ये पकड़ के मुझे कमरे में ले, आंख खुल गई। और फरमाया बेटा ये थे शेख अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाह अलैह और ये दो ऐज़ुल बहर का फैज। और एक कमाल की बात ये थी, फरमाया जो जलेबियां उन्होंने मुझे खिलाई उसकी मिठास भी मेरी जबान पे मौजूद थी, यानी कि सिर्फ ख्वाब ही नहीं था हकीकत भी थी। ये है बुजुर्गान दीन की शान कि जब वो अता फरमाना चाहें तो सब कुछ अता फरमा देते। तलब होनी चाहिए, इस्तकामत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, अकीदत होनी चाहिए और इखलास होना चाहिए, दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं कि हम ये चिल्ला कर लें तो लोग कहें ये बड़े नेक हैं, ये बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, हम लोगों को बताएं हमने चिल्ला किया है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, जिस रब की रजा के लिए किया है वो सब जानता है। आपको क्या जरूरत है लोगों को बताएं कि मैं अल्लाह समद पढ़ता हूं, मैं सूर्य मुजम्मिल पढ़ता हूं, मैं दुआ हिजुल बहर पढ़ता हूं, सिवाय अपने शेख के किसी को बताने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए और किसी मकसद के लिए। तो दूसरी चीज जो उनके मामूलात में शामिल थी और हमेशा उन्होंने सारी जिंदगी हमने बचपन से लेकर और उनके विसाल तक देखा, यानी जब हमने होश संभाला उस वक्त से लेकर और वालिदे गिरामी के विसाल तक एक दिन भी इन मामूलात में नागा नहीं हुई। बुखार हो, तबीयत खराब हो, कैसी कैफियत हो, कभी भी ये नहीं कहा कि आज मुझे बुखार है, आज मैं सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़, आज मेरे सर में दर्द है, चलो आज हिज़्बुल बहर नहीं पढ़ेंगे, आज मसरूफियत हो गई, आज ये छोड़ दो, नहीं। जैसे टाइम हुआ खुद ब खुद जबान पर जारी हो, उनकी रूहानी गिजा बन गई। अब हमें भूख लगती है ना, खाना खाते हैं फौरन, ये उनकी रूहानी भूख थी, रूहानी गिजा थी। वक्त पर ना मिले तो बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते। अब इंसान अगर थका हुआ हो तो वो सोता है तो सोता ही रहता है, बहुत ज्यादा अगर थका हुआ हो तो आंख ही नहीं खुलती। लेकिन उनकी कैफियत ये थी, कितनी ही थकान हो, कैसी तबीयत खराब हो, हमने उनको सुला दिया, टांगे दबाई, कंबल डाल दिया, सर्दी है आराम से सो जाएं, लेकिन जब सूर्य मुजम्मिल का टाइम होता था खुद ब खुद आंख खुल जाती। कभी ये होता था कि बच्चों को बाहर निकाला कि देखो शोर नहीं करो, सो रहे हैं, सुला दिया, टांगे दबा दी, बेखबर सो रहे हैं, हम लोग कमरे से बाहर आ गए, सोने तो अच्छा आज आराम से सोने, सोते रहेंगे कुछ देर आराम कर लें, आधा घंटा गुजर गया, एक घंटा गुजर गया, खुश हो रहे हैं, चलो सो रहे हैं। और जब जाके देखा तो मुसल्ले पे बैठे हुए हिज़्बुल बहर पढ़, कभी सूरह मुज़म्मिल पढ़, उनका टाइम है, उठे जाके वजू किया, खामोशी से जाके बैठ गए। ये कैफियत होनी चाहिए। जैसे आपको जिस्मानी भूख लगती है ऐसे इन वजाइफ की आपको रूहानी भूख होनी चाहिए, यानी जब उस टाइम पर वजीफा न पढ़े तो रूह बेचैन हो जाए, जब पढ़ लें तब रूहानी सुकून हो। और वारिदे गिरामी की कैफियत यही थी कि खाना मिले ना मिले, नाश्ता मिले ना मिले, उनके वजाइफ पूरे होने चाहिए, जब वजीफा पूरा हो जाता था सुकून मिल जाता। 1998 में गालिबन लाहौर तशरीफ ले गए तो उनकी नाक से खून जारी हो गया। बाज दफा ऐसा होता है कि ये ऊपर की तरफ अगर जाए तो दिमाग की रग फट जाती, उसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज, और अगर वो ऊपर के बजाय उसका प्रेशर नीचे की तरफ हो जाए तो इंसान बच जाता। तो अचानक रात में एकदम खून जारी हुआ और बहुत तेजी के साथ, पहले वो टिश्यू रखे फिर कपड़े रखे, लेकिन वो मुसलसल जारी, उनके लिबास खराब हो गया, दाढ़ी खूनम खून हो गई। डॉक्टर को बुलाया, उसने फौरन वो पट्टियां अंदर रखी और उसको पैक कर दिया नाक, और डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो अल्लाह का करम हुआ कि खून का दबाव नीचे की तरफ था, अगर ये दिमाग की तरफ होता तो ब्रेन हेमरेज होता, दिमाग की रग फट जाती, और जब रग फट जाती तो मौत वाकई हो जाती। अब क्या करें, उन्होंने कहा इनको फौरन हॉस्पिटलाइज करें, दाखिल करें फौरन। इत्तेफाक हॉस्पिटल में लाहौर में उनको दाखिल किया गया। डॉक्टर ने नाक में पट्टियां अंदर करके रुई और ऊपर से टेप लगा के बिल्कुल पैक कर दी। अब जाहिर है नाक बंद हो तो आदमी से मुंह से सांस ले सकता है, और मुंह भी बंद हो तो फिर एकदम बेचैनी घबराहट होती, अब वो मुंह खोल खोल के सांस ले रहे हैं। अब डॉक्टर ने ये कहा कि इनको सुलाना चाहिए, जितना ये सोएंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि जब उठ के बैठते थे तो दबाव पड़ता था, फिर खून जारी हो जाता। अच्छा, नाक बनती तो वो हलक में उतरता था, फिर मुंह से खून, फिर वो दवाएं देते थे, टेबलेट इंजेक्शन लगाते थे, जो जो उनका ट्रीटमेंट था वो करते थे। उन्होंने क्या किया, एक नींद की गोली दी और कहा कि ये इतने घंटे असर करेगी, यानी एक घंटे या आधे घंटे जो भी है, और जब इसका असर खत्म हो जाए फौरन दूसरी गोली दे दें, उसका असर खत्म हो तो फौरन तीसरी दे दें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सोई, और जब हम चेक करना चाहेंगे तो उसको रोक देंगे, ये उठ के बैठ जाएंगे तो फिर जो भी देखना है, जो चेक करना है वो कर लेंगे। अब आप देखिए, फजर का वक्त हुआ, उन्होंने वहीं बिस्तर पर लेटे लेटे नमाज अदा की और उसके बाद वो सो गए। फजर के बाद आराम करते थे और 9 बजे सूरह मुजम्मिल शरीफ शुरू करते थे। 2 घंटे में 100 मर्तबा सूरह मुजम्मिल पढ़ लिया करते। जब टाइम हुआ, अब उनकी कैफियत क्या थी, क्योंकि नींद की गोली दी हुई थी, वो अपना असर कर रही थी, तो आंख बंद थी और जबान पर जारी, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला, फिर आंख बंद हो जाए, फिर सो जाए, फिर एकदम आंख खुले, यानी एक हिस्सा पढ़े फिर सो जाए, फिर पढ़े फिर सो जाए, बेचैनी। तो हाजी निसार अहमद पराचा साहब वाले साहब के मुरीद लाहौर में, वो और मैं वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पूछा कि ये क्या कैफियत है हजरत की, नींद की गोली दे रहे हैं फिर भी उनकी जबान पे सूरह मुज़म्मिल जारी, वो सो जाते हैं फिर बेचैन, कभी करवट ले रहे हैं कभी बेचैन हो। मैंने कहा मैं बताऊं क्या बात, कहा बताइए। मैंने कहा मसला ये है, ये उनके सूरह मुज़म्मिल पढ़ने का टाइम, और कभी एक दिन की नागा नहीं हुई, टाइम भी इधर से उधर नहीं हुआ, अब रूह अपनी गिजा मांग रही है और गोली अपना असर कर रही है। नींद की गोली तो दिमाग को सुलाती है ना, वो अपना असर कर रही है और रूह बेचैन हो रही है, रूह को गिजा चाहिए, कहना फिर क्या करें। मैंने कहा एक काम करें, जब वो गोली देने के लिए आए उससे कहना हम दे देंगे तुम जाओ, ठीक है। वो नर्स आ गई गोली लेकर, पानी का गिलास लेकर, कि क्या देनी है, हमने कहा आप रख दें अभी हम दे, वो चले गए, हमने गोली डस्टबिन में डाल दी, पानी का गिलास रख दिया। अब जो पहले गोली खाई थी उसका असर खत्म हुआ तो हजरत उठकर बैठ गए और उन्होंने टाइम देखा और हम लोगों को डांटा कि तुमने क्या किया, मेरा टाइम निकल रहा है, वुजू कराओ फौरन, मुझे सूरह मुज़म्मिल पढ़नी, नाश्ता नहीं मांगा, हालांकि नाश्ता नहीं किया था, हमने वहीं पर तसला रखा, वुजू कराया और उसी कैफियत में उन्होंने सूरह मुज़म्मिल शुरू की। हम लोग वहीं बैठे रहे, आराम से वो पढ़ते रहे आंख बंद करके, कोई बेचैनी कोई बेकरारी नहीं थी, जबकि नाक बंद थी बिल्कुल। 2 घंटे में सूरह मुज़म्मिल उनकी पूरी हुई, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, हम सब ने उनके साथ दुआ की, उसके बाद वो लेट कर बगैर गोली के इत्मीनान से सो गए, गोली की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा अब तुमने देखा, रूह को गिजा मिल गई, सुकून मिल गया, अब गोली की जरूरत नहीं है, बगैर गोली के नींद आ जाएगी। उस वक्त तुम गोली दे रहे थे फिर भी नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहे थे, बेचैनी भी करा रही थी, इसलिए कि रूह अपनी गिजा मांग रही। ये कैफियत होनी चाहिए कि खाना मिले ना मिले, नाश्ता मिले ना मिले, जो आपके औराद व वजाइफ हैं वो वक्त पर पूरे होने चाहिए, रूह की गिजा बन जाए। जिस आदमी ने सारी जिंदगी पढ़ा हो और कभी एक दिन का नागा ना किया हो, ये उसी की कैफियत हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। इसी तरह अल्लाहुस्समद, अल्लाह तबारक व तआला का एक इसमें गिरामी है, अस्माउल हुस्ना में से बड़ा मोतबर, बाफैज और रिजक रोजगार के लिए ये जबरदस्त इसमें पाक है। जो शख्स ये पढ़ता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता, अल्लाह तबारक व तआला रहमतें बरकतें शामिल करता। वालिद गिरामी ने अल्लाह समद के 70 चिल्ले की, गौर करें आप, और एक चिल्ला इस तरह कि एहराम बांधकर, रोजा रखकर, फजर से पहले बैठे और ईशा तक 1.25 लाख अल्लाह समद खत्म कर ले। एक चिल्ला मुकम्मल हुआ, दादा हजूर ने फरमाया कल फिर करना है, फिर बैठ गए, वो मुकम्मल हुआ कल फिर करना है, वो हुआ तो कल फिर करना है, मुसलसल कराते रहे। आदमी कोई और हो तो थक जाए कि जी अब कुछ तो किया है, अब जरा एक दिन गुजर जाए, आराम कर लें, जरा थोड़ी देर सो ले, कुछ खा पी लें, रोजाना रोजे रखे जा रहे हैं, रोजाना चिल्ले पे चिल्ला, नहीं, करते रहे करते रहे। तो फरमाते हैं कि जब ये चिल्ले मुकम्मल हुए तो मेरी कैफियत ये हुई कि मैं जिधर भी नजर डालता था मुझे अल्लाह समद लिखा हुआ नजर आता। इतना पढ़ा कि कल्ब और जहन के अंदर बस गया, ये इसमें मुबारक रच गया, दिल के अंदर बस गया। कहते जिधर मैं देखता था वहीं अल्लाह समद लिखा हुआ नजर आता। तो मैं इसीलिए जमीन पर नजर नहीं डालता था कि यहां भी लिखा हुआ नजर आएगा तो बेद भी ना हो जाए। 70 चिल्ले, मामूली बात नहीं है, आप एक चिल्ला करके देख लें तो पता चल जाए। और हमने तो बहुत आसानी कर दी कि चलो अहराम ना बांधो, घर में कर लो, 3125 रोज कर लो, 40 दिन में 1,25,000 हो जाए। उन्होंने 24 घंटे में 1,25,000 किया, 24 घंटे में। और लोगों की यह कैफियत है, असल में हर आदमी दूसरे को बेवकूफ समझता। किसी को चिल्ला करने के लिए बिठाया, वाले साहब ने बहुत से लोगों को चिल्ला कराया, यहीं मजार शरीफ के पास, चिल्ला कर लोगे? जी जी बिल्कुल कर लेंगे। क्या 1,25,000 पढ़ना है? हाँ जी हम बिल्कुल पढ़ेंगे। एहराम बांध के रोजा रखवा के मजार शरीफ के पास बिठा दिया। दोपहर को उन्होंने हमसे कहा जाओ देख कर आओ कितना हुआ। 2 बजे हम गए, कहने बस 10,000 रह गए। अरे इतना फास्ट, इतनी तेजी पड़ रही है क्या? 2-2 दाने डाल रहे क्या? कहना हो गया। अच्छा असर के वक्त गए तो वो जानमाज लपेट के बैठे हुए आराम से, हो गया पूरा। कभी 1,25,000 कैसे हो गया? मैं हो गया। सोचना ये चाहिए, एक रास्ते से एक आदमी गुजरा है, उसके नशेब और फराज से वाकिफ है ना, वो जानता है कहां पर नशेब है, कहां फराज है, कहां गड़ा है, कहां कुछ है, हर चीज जानता है। जिन्होंने 70 चिल्ले किए वो नहीं जानते थे इसने कैसे पढ़ा है, उनको नहीं पता होगा, समझते पीर कुछ जानता ही नहीं है, हमने पढ़ लिया। और आप उनका जर्फ देखिए, कोई और होता या दादा हुजूर किबला होते तो 2 थप्पड़ मार के उसको बाहर निकाल देते, भाग यहां से, हमसे झूठ बोल रहा है, हमें नहीं पता कितना पड़ा है, हमने खुद किया हुआ चिल्ला कि 2 बजे कैसे खत्म हो गया या असर के बाद कैसे खत्म हो गया। लेकिन उनकी कैफियत क्या थी जब हम जाकर उनको बताते थे और हमें गुस्सा आता था, हम कहते हैं बुजुर्ग किबला ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है, तो मुस्कुरा के फरमाते थे अगर वो ये कह रहा है कि उसने 1,25,000 पढ़ा है तो 50,000 तो पढ़ा ही होगा, कम से कम 50,000 तो पढ़ा ही होगा। चलो इतनी देर पढ़ा तो वो झूठ से बच गया, गीबत से बच गया, चुगली से बच गया, गलत कामों से बच गया, इतना ही है ना। चलो ठीक है अब क्या करें, करें जाओ जाके दुआ कर दो। हमने कहा हम दुआ क्या करें, इसने तो पढ़ा ही पता नहीं कैसा। कहा दुआ ये करना, दादा हुजूर किबला के मजार पे जाके दुआ ये करना, इलाहुल आलमीन इसने जैसा भी पढ़ा है तो कबूल कर ले, जैसा भी पढ़ा है कबूल कर ले, और इसका सीना खोल दे, इसके मामलात खोल दे, जो गलती हो गई इससे माफ कर दे। ये था उनका करम, इतनी शफकत मुरीदीन पर, देख रहे कि झूठ बोल रहा है, गलती कर रहा है, फिर भी दरगुदर कर दे। चलो पढ़े तो सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, कुछ नहीं कर रहा तो कुछ कर तो रहा है। अगर इसने 1,25,000 कहा तो 50,000 तो पढ़ा ही होगा, चलो ठीक है जाने दो। और कुछ ऐसे भी थे, यानी सारे ऐसे नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल सही तौर पर चिल्ला किया, यानी सुबह शुरू किया तो पता चला रात को 12 बजे खत्म हुआ, किसी का 1 बजे खत्म हुआ, किसी का 2 बजे खत्म हुआ, और वारिद गिरामी ने खुद बताया कि हाँ इस आदमी ने बिल्कुल सही पढ़ा, इसने बिल्कुल सही पढ़ा, कोई गलती नहीं की। और वहीं बैठे बैठे देख लेते थे, उनको उठ के आने की जरूरत नहीं, हमें भेजते थे जाके पूछ लो कितना हुआ, वो लिख के देते इतना हुआ, और वो वहीं बैठे बैठे बताते थे ये सही पढ़ रहा या गलत पढ़ रहा, ये उनका कष्ट था। तो कितने लोगों को, ऐसे लोग जिन्होंने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी उनसे चिल्ले भी करवा दी, ये पढ़वाने वाले की शान है। लोग कहते हैं हमने पढ़ लिया, गलत है, पढ़वाने वाले ने पढ़वा दिया, ये तो उनका कर्म था कि उन्होंने पढ़वा दिया, हमने क्या पढ़ लिया, हमारी हैसियत ही नहीं है, तुम बगैर इजाजत पढ़ के बता दो कितना पढ़ लोगे। इजाजत होती है तो साहिब इजाजत के तसरुफात शामिल होते हैं, साहिब इजाजत की रूहानियत शामिल होती है, और जितने बुजुर्गान दीन है उन सब की निगाह करम शामिल है। हालो ये हमारे सिलसिले में दाखिल है, ये हमारी इजाजत से पढ़ रहा है, लिहाजा ये शैतान के हमलों से महफूज रहे, गलत चीजों से महफूज रहे, अल्लाह ताला इसकी मदद करे और इसका बेड़ा पार हो जाए। ये चीज है इजाजत से, वरना हम लोग क्यों नहीं कर लेते, वरना पीर की जरूरत ही नहीं, जिसको चाहे चिल्ला कशी करे और वो वली अल्लाह बन जाए। नहीं, बैत जरूरी है, किसी के सामने झुकना जरूरी है, किसी को अपना शेख बनाना जरूरी है, उसकी इजाजत जरूरी है, तब किसी मंजिल पर पहुंचो, बगैर उसके नहीं पहुंच सकते। तो हमने तीन चीजें बयान की, वालिद गिरामी के मामूलात में सूरह मुजम्मिल, दुआ इज़ुल बहर, अल्लाहु समद, इसके अलावा 1000 मरतबा सूरह इखलास रोजाना, रोजाना रात में पढ़ते थे। यहां किसी को 3 दिन के लिए बता दो तो परेशान हो जाता, किसी का मसला हो तो उससे कहो भाई 3 दिन तक सूरह इखलास पढ़ लो, अरे 1000 कुछ कमी हो जाएगी, कुछ थोड़ी सी कमी हो जाए, 500 पढ़ लो, नहीं इसकी भी कमी हो जाए, मैंने तुम्हें 1 मरतबा पढ़ लो जाओ चलो, नहीं नहीं ये नहीं, आप नाराज ना हो भाई, तुम अपना मसला देखो, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं 1000 मरतबा पढ़ो, फिर देखो अल्लाह की कैसी रहमतें नाजिल होती। असल में खुशु खुजू नहीं, और शैतान जो है दिल में वसवसे पैदा करता है, इन चीजों से दूर करता है। ये जगह जगह मांगने से बेहतर है उस एक से मांगो, हर एक को राजी करने से बेहतर है उस एक को राजी करो, बस ये राजी हो जाए मेरा काम हो जाए, वो कहते सेठ राजी हो जाए मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, फला राजी हो जाए तो मेरा कारोबार चल जाए, ये सब एक तरफ रखो, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करो, वो राजी हो गया सब राजी हो, रब राजी तो जग राजी। यही नुक्ता समझा बुजुर्गान दीन ने, हम दुनिया वालों को राजी करते रहे और गौसे आजम अल्लाह को राजी करते, गरीब नवाज अल्लाह को राजी करते रहे, मखदूम समनानी अल्लाह को राजी करते रहे, खुतब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी अल्लाह को राजी करते रहे, अशरफुल मशाइख सैयद अहमद अशरफ जिलानी अल्लाह को राजी करते। तो उन्होंने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह उनसे राजी हो गया, पूरी कायनात राजी हो गई। असल ये नुक्ता है। फिर जो कुछ मामूलात उन्होंने शुरू किए उसमें किसी दिन भी और किसी तरह का भी तातुल नहीं आया, तब्दीली नहीं हुई, कोई गफलत नहीं हुई कि उसको तर्क कर दिया जाए इस्तेकामत के साथ। 1986 में कोयत एयरवेज से हम इंग्लैंड गए, वारिद गिरामी के साथ में गया, तो आप जानते हैं कि जो एयरलाइन जिस मुल्क की होती है वहां पर स्टे करती जरूर, मसलन अगर आप एमिरेट से जाएं तो दुबई रुकेगी, इत्तेहाद एयरलाइन से जाएं तो अबू धाबी रुकेगी, और जिस एयरलाइन से जाएं अपने मुल्क में वो स्टे जरूर करे। तो हमें लंदन जाना था इंग्लैंड 86 में, उन्होंने कहा जी 2 घंटे का स्टे जो है वो कोयत में है, कोयत एयरवेज से 2 घंटे स्टे करेगी फिर जाएगी वहां से, वहां से मुसाफिर लेने होंगे, और ठीक है यहां से रवाना हुए। जब वहां रुके उन्होंने कहा कि जी सिर्फ 1 घंटे का स्टे, उन्होंने कहा अच्छा, इन्हें तो 2 घंटे पता है, कहा नहीं 1 घंटे का स्टे, बस आप उतरे, आप चाहें तो एयरपोर्ट वगैरह देख लें, बाहर नहीं निकल सकते, घूमे फिरे कुछ खाना पीना कुछ हो तो ठीक है, और 1 घंटे बस फौरन उससे पहले पहले ऐलान होगा और आप जहाज में बैठ जाए। जब हम कोयत एयरपोर्ट पर उतरे तो उस वक्त रात का 1 बज रहा था, और 1 बजे वाले साहब क़िबला अपने नफिल शुरू करते थे, और हर रात 100 नफिल वो रोजाना पढ़ते पाबंदी के साथ, सर्दी हो गर्मी हो बुखार हो कैसी तबीयत हो कैसा मौसम हो नफिल जारी। उन्होंने टाइम देखा, मुझसे कहा कि कोई जगह देखो तो वहां मुसल्ला बिछा दो मैं नफिल पढ़ूं। मैंने कहा यहां पर, मैंने घूम फिर के देखा तो एक जगह बोर्ड लगा हुआ था मॉस्क मस्जिद, जब मैं आगे गया तो उन्होंने एक पार्टीशन करके एक जगह बना दी थी, बेहतरीन कालीन बिछा हुआ था, एक डेस्क थी उस पर कुरान शरीफ रखी हुई, जैसे एयरपोर्ट पे मस्जिद होती। तो मैंने वाले साहब को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। उस जमाने में उनकी सेहत बिल्कुल सही थी, 1986 में, 86 में, लकड़ी लेकर भी नहीं चलते थे, बिल्कुल खुद चलते आराम से, व्हीलचेयर तो बहुत दूर की बात। फौरन मेरे साथ आई, मैंने वहां जाकर उनका मुसल्ला बिछा दिया, उन्होंने नफिल शुरू कर। मैंने एक जुमला उनसे कहा कि आपके नफिल तो 2 घंटे में पूरे होंगे और ये कहना 1 घंटा, तो उन्होंने कहा उनको कहने दो, हम तो अपना काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो आगे बैठ गए, मैं उनके पीछे बैग लेकर बैठ गया, उन्होंने नफिल शुरू कर ली, खड़े होकर नफिल आराम से पढ़ते थे। आखिर में तो तबीयत नासाज हुई तो फिर बैठ के उन्होंने पढ़ना शुरू किए, वो नफिल पढ़े, उन्होंने सलाम फेरा, फिर दोबारा नियत बांधी, फिर सलाम फेरा। अब मैं टाइम देख रहा हूं कि 1 घंटा होने वाला, और 1 घंटा होने से पहले ऐलान होगा कि भाई आप लोग जहाज में बैठ जाएं, कम से कम 10-20 मिनट पहले तो बिठाएंगे, वो ऐलान ही नहीं हो रहा। अब मैं परेशान, और जब ऐलान हुआ तो ये हुआ कि अब 1 घंटे के बजाय 2 घंटे के बाद जाएंगे। मैं कही हजरत की करामत है, तो मैंने सोचा कि उनसे कुछ पूछूं, या उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, सलाम फेरा, फिर खड़े होकर फिर नियत बांधी। अच्छा, उस वक्त जब मैंने और लोगों का जायजा लिया जो और मुसाफिर थे, उनकी कैफियत क्या थी, उनसे वक्त नहीं गुजर रहा था। एक साहब थे, वो अपने बच्चों को लेकर, वो जो खुदकार जीने होते हैं ना, खुद ब खुद चलते हैं, उस पर ऊपर जाते थे, दूसरे जीने से नीचे उतर जाते, कभी ऊपर जा रहे हैं नीचे यार। एक साहब जो है वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ जो थे वो ऐसे ही घूम रहे हैं, एयरपोर्ट देख रहे हैं, टाइम गुजारे के टाइम कैसे गुजरे, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब दुनियावी कामों में लगे हुए हैं। एक मर्द कलंदर था जो अल्लाह की याद में लगा हुआ, उसको ना खाने की फिक्र थी, ना पीने की फिक्र थी, ना किसी चीज की फिक्र थी। उस मर्द कलंदर को सिर्फ ये फिक्र थी, मेरे ये 100 नफिल पूरे हो जाए। ये है अल्लाह वालों की शान। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उन्होंने कि ऐलान हुआ या नहीं हुआ, सलाम फेरते थे, फिर खड़े हो जाते, फिर सलाम फेरे, तस्बीह के दाने खिसकाते रहे। और 2 घंटे बाद जब उनके नफिल पूरे हुए, अब मैं सोच रहा हूं अब ऐलान होगा, और ऐलान तो जाहिर है 2 घंटे से पहले होना था, 10-15 मिनट 20 मिनट पहले बिठाना था, ऐलान ही नहीं हुआ। दोबारा 2 घंटे गुजर गए, मैं हैरान हुआ, अब ऐलान होने वाला है, और जब ऐलान हो जाएगा तो फिर तो नफिल रह जाएंगे, और जहाज में कैसे पड़ेंगे बैठकर, मैं यही सोच रहा हूं। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना मुझसे पूछा कि ऐलान हुआ या नहीं हुआ, सलाम फेरा, फिर नियत बांध ली, फिर सलाम फेरा, फिर नियत बांध ली। 2 घंटे के बाद जब उनके नफिल पूरे हुए, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, मैंने भी दुआ के लिए हाथ उठा लिए, और उन्होंने जब अपने चेहरे मुबारक पर हाथ फेरा, इधर ऐलान हो रहा था फ्लाइट तैयार है, आप जहाज पे चले जाएं, तब उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, फरमाया बेटा तुम अल्लाह के काम में लग जाओ, अल्लाह तुम्हारे काम में लग जाए, तुम्हें ये फिक्र की जरूरत ही नहीं क्या है, तुम अल्लाह के काम में लग जाओ, अल्लाह ताला खुद तुम्हारे काम में लग जाए। उनके मामूल पूरे हो गए। मैंने सोचा देखो ये दुनिया वाले ये कैसे रात गुजार रहे थे, कोई घूम रहा था, कोई फिर रहा था, कोई चाय पी रहा था, कोई खुश गप्पियों में मसरूफ था, कोई कुछ कर रहा था, अल्लाह का एक वली अल्लाह की याद में लगा हुआ था, और उसी के लिए अल्लाह ने फ्लाइट को लेट कर दिया। 2 घंटे का कहा था, 2 घंटे के बाद ऐलान हुआ, थोड़ी सी लेट हो गई, उन्हीं की वजह से लेट कर दी। तुम अपना काम पूरा कर लो, ये सब तो ऐसे ही है, इनकी वजह से नहीं करेंगे, एक की वजह से हम सबको लेट कर देंगे, इसलिए कि वह हमारा है, वह हमारे लिए कर रहा है, अपनी जात के लिए नहीं, वह हमारी रजा के लिए। यह है बुजुर्गान दीन की शान। तो वो आराम से बेफिक्र हो गए कि मेरे 100 नफिल पूरे हो गए, और उसके बाद ऐलान हुआ, जहाज में आराम से बैठे, उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे वजाइफ शुरू कर दी। और सफर में हमने यही देखा कि जहाज में भी जब बैठते थे, अब लोग जाहिर 7 घंटे का सफर इंग्लैंड का, हॉलैंड का, और अगर और आप दूर जाएं तो कितने लंबे लंबे सफर हैं। लोग क्या करते हैं, कोई वो बटन दबा के टीवी देखना शुरू कर देता है, कोई वो कान में लगा के कोई गाने सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सो रहा है, टाइम गुजारने किस तरह, किसी को कुछ नहीं मिलता था, उतर के ऐसे टहलना शुरू कर देता है, इधर से उधर गए, इधर से इधर आ गए, क्या हुआ जी, बैठे बैठे तांगे थक गई, जरा घूम ले। वालिद गिरामी का मामूल ये था, सबसे पहले वो अपने वजाइफ मुकम्मल करते, कोई भी सफर हो पहले अपने वजाइफ मुकम्मल करते, उसके बाद कोई और काम करते। अगस्त का महीना बारिशों का महीना, आप जानते पूरे मुल्क में बारिशें होती, तो पिशावर तशरीफ ले गए वालिद गिरामी, तो मेरे बिरादर असगर साहबजादा हकीम सैयद अशरफ जिलानी उनके साथ थे, तो वो बताते हैं कि मैं उनके बराबर बैठा था, अचानक जहाज ने हिचकोले खाए, ऊपर हुआ और थम से नीचे, लोग घबरा गए, एकदम इमरजेंसी लाइटें जल गई, लोग परेशान हो गए, कोई दुर्हरी पड़ रहा है, कोई अतल कुर्सी पड़ रहा है, तो कहते हैं कि मैंने देखा वाले साहब आंखें बंद किए सूर्य मुजम्मिल पड़ रहे। जहाज ने फिर झटका दिया, इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, बहुत हम मुस्कुराए, बेटा कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। सारे जहाज वाले परेशान है, उनको इत्मीनान था, उनको पता था कुछ होना ही नहीं है, खामखा परेशान है। डर तो उसको हो ना जिसको मौत का खौफ हो, जो पहले से मौत के लिए तैयार है उसको काहे का डर है, और जिसको पहले ही पता है कि जब मैं मौजूद हूं इस जहाज में तो यह गिर नहीं सकता, उन्हीं की वजह से पूरे जहाज की हिफाजत हो रही है। तो फरमाते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ आराम से। दो तीन झटके जहाज ने जोरदार दिए, बारिशें हो रही थी, मौसम खराब था, इमरजेंसी लाइटें जल गई, उन्होंने कह दिया आप लोग बिल्कुल बेल्ट वगैरह बांध लें, कुछ भी हो सकता है, मौसम जो है बहुत खराब, तेज हवा चल रही है जैसे जहाज को कोई हिला रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, दो तीन झटके, आराम से बैठे रहे। कुरान कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है ना कोई गम, कोई खौफ और गम नहीं। तो ये जब भी होता है जब बंदा अल्लाह का हो जाए तो अल्लाह उसका हो जाता। तो ये उनकी हयात मुबारक के चंद गोशे हमने आपके सामने पेश किए, इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो जो औरादो वजाइफ हम पढ़ते हैं हमें चाहिए कि हम इस्तेकामत के साथ उस पर अमल करें। सबसे पहली चीज नमाज, और उसके बाद जो औरादो वजाइफ सूरह मुजम्मिल हो, दुआए हिज्जुल बहर हो, सूरह फातिहा हो, या कोई भी सूरत जो आपके मामूल में हो, उस पर ऐसी इस्तेकामत हो कि खाना मिले ना मिले लेकिन मेरा वजीफा पूरा होना चाहिए, रूहानी भूख पैदा होनी चाहिए। जब ये चीज होगी तो फिर आप देखेंगे रूहानियत आपके अंदर पैदा होगी, कल्ब साफ होगा, और इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। आइए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। या अल्लाह अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहु के मजार मुबारक पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए, और उनके वसीले जलीला से हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें, हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह उनकी तरह इस्तेकामत के साथ अपने मामूलात को पूरा करने की तौफीक अता फरमा, उनकी तरह इस्तेकामत अल मामूलात अता फरमा, उनकी रूहानियत से हमें थोड़ा सा हिस्सा अता फरमा, उनकी निगाह करम हमें अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, बुजुर्गान सिलसिले अशरफिया के फैजान से मुस्तफीद फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन ये तमाम हजरात और ख्वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इनके इल्म में अमल में उम्र में बरकत अता फरमा, इनके रोजगार में तरक्की अता फरमा, इनकी जाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर हो। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।